हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप हर सप्ताह भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज भी भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे हम, नौवें अध्याय से और बारहवां श्लोक है। जैसा मुझे बताया गया है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, श्लोक संख्या है 12 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है आज, वो भी क्या है, परम। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहनीम शिता। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहनीम सिता। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहनीम सिता। शब्दार्थ मेरे पीछे बोली, मोघ आशा निष्फल आशा, मतलब वृथा आशा, निष्फल वृथा बेकार की आशा। मोघ कर्मना निष्फल सकाम कर्म, जो ऐसे काम कर्म जिसका कोई फल नहीं है, बेकार वृथा बेकार। मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान, विचेतसा मोहग्रस्त, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी, च तथा एव निश्चय ही, प्रकृतिम स्वभाव को, मोहनीम मोहने वाली, शिता शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, मेरे पीछे आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद जब द्वारा बोलूंगा तब आप बोलिए, पहले सुनिए आप। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, अर्थात वृथा। तो ये शुरू होता है अनुवाद, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार, इसके पहले श्लोक को देखना पड़ेगा क्योंकि ये उसके कंटिन्यू है। तो पहले श्लोक में हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते में, अब जानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब भगवान मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में हमारे साथ आते हैं, रहते हैं, लीलाएं करते हैं, तो कुछ लोग उनका उपहास करते हैं, मखौल उठाते हैं उनका, कि ये कोई भगवान थोड़े ही है, ये तो हम जैसे ही हैं, हमारे में से ही एक है। जैसा शिशुपाल आदि ने भी यही सोचा था, दुर्योधन ने भी, यहां तक के भगवान को कैद करने के लिए बोल दिया था जब वो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, तो मतलब कृष्ण को वह भगवान नहीं मान रहे थे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, अभी इसके कंटिन्यू ये वाला श्लोक आ रहा आज का, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, उनके विचार भी जो हैं आसुरी राक्षसों वाले और नास्तिक, कोई भगवान नहीं है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, ऐसा सोचते हैं। और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी मुक्त होने की आशा, या उनके सकाम कर्म के जो फल हैं तथा ज्ञान का अनुशीलन, सभी उनके व्यर्थ जाते हैं, अर्थात जो व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्था ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों और असुरों जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, और ऐसे लोगों को क्या होता है, मुझे प्राप्त नहीं होती। ये भगवान ने अपना डिसीजन दे दिया कि ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं होते। जबकि मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, वो केवल और केवल एकमात्र कृष्ण को पहचानने के लिए है, कृष्ण की भक्ति करके दोबारा अपने घर वापस जाना, बैक होम, बैक टू गॉडहेड जाने के लिए ही मिला है। लेकिन क्या होता है कि हम सब जिनको मानव बनने का मौका मिल गया भगवान की कृपा से, तो हम अपना सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया यही जाता है, शुरू से ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में, पढ़ाई कर लो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। इस प्रकार की बचपन से ही हमें ये शिक्षा दी जाती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा हमें बचपन से ही दी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं, खासकर कलयुग में तो बहुत ही रेयर है, मुश्किल है। हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा से जिन लोगों ने अपने संबंध इस्कॉन से बनाए हैं वो भाग्यशाली हैं और अपने बच्चों को वो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कौन है इसके बारे में बताते हैं। नहीं तो अदरवाइज सभी लोग अपने बच्चों को यही इंद्र तृप्ति का ही सबक दे रहे हैं, उनको ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जबकि मनुष्य जीवन जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। नहीं तो जो जानवर लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो तो हमारे से ज्यादा अच्छी तरह से इंद्र तृप्ति कर सकते हैं और करते हैं। तो फिर हमें मनुष्य क्यों बनाया उन्होंने भगवान ने? इसके पीछे भगवान का उद्देश्य है, स्पेशल उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करके, कृष्ण की भक्ति करके हम भगवत धाम वापस जा सके। और जो नहीं इसको स्वीकार करते, ये बच्चा कौन बोल रहा है, इसको चुप, जो स्वीकार नहीं करते हैं तो दोबारा फिर वो पशु पक्षी जानवर आदि बनने के लिए तैयार रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक भक्त हैं, अभी बोलते बोलते ना जो बोलना चाहता था आधे भूल जाता है जब शोर होता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसा ही हो रहा है वैसे, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग आजकल, मायावादी भी, आर्य समाजी भी, जो भगवान को मानते नहीं है, कृष्ण को मानते नहीं है, वो भी आजकल भागवत सप्ताह करते हैं, भगवत गीता का उपदेश देते हैं। जो भगवान को मानते नहीं वो भी, कृष्ण को मानते नहीं भगवान, ऐसे लोग भी आजकल भागवत सप्ताह, जितने भी मायावादी टीवी में आते हैं ना, सारे मायावादी हैं, वो भगवान को नहीं मानते दिल से, लेकिन दिखाते हैं वो कि हम कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भक्त हैं। जहां तक के आज के युग में एक बहुत बड़े सन्यासी अपने आप को कह रहे हैं, वो भी बड़े मशहूर हो गए हैं, कृष्ण भक्त नहीं है वो, लेकिन मशहूर पूरी दुनिया में हो गए हैं वो, और अभी कृष्ण का नाम भी लेते हैं, कृष्ण को भी कभी कभी भगवान बोल देते हैं वो लोग, नहीं तो पहले कभी नहीं बोला करते थे। जितने भी आर्य समाजी थे वो भगवान को क्या बोलते हैं, कृष्ण को क्या बोलते हैं, ये महापुरुष है, महापुरुष, भगवान नहीं कभी बोलते थे। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया थोड़ा सा, लोगों को धोखा देने के लिए योगा के नाम से कभी कभी कृष्ण को भी भगवान बोल रहे हैं आजकल। ये योगा होने से और भगवान की भक्ति करने में कोई लिंक नहीं है आपस में। ठीक है, योगा जो है वो ठीक है, अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए जरूरी है, लेकिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति हो जाएगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो दर्शाते हैं, वो प्रभुपाद जी ने बहुत पहले लिख दिया, जी तो अभी हो रहा है ना, प्रभुपाद जी ने बहुत पहले लिख दिया ये अपने तात्पर्य में। अनेक ऐसे भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते हैं। वो तो क्या, इवन बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने भी जब व्याख्या की भगवद गीता की तो वो भी कहते हैं नहीं 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 भगवान जो है कृष्ण जो है भगवान नहीं है, नमस्कार जो करना है जो कृष्ण के अंदर है उसको नमस्कार करना है, कृष्ण को नमस्कार नहीं करना, कृष्ण के शरीर को नमस्कार नहीं करना है। उनको ये पता नहीं है कि भगवान के शरीर में और भगवान के अंदर जो भी है उनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है, भगवान का अंदर बाहर सब दिव्य है। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग अपने घर वापस, जो हमारा असली घर है भगवान का धाम वैकुंठ लोक, वहां पर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोतगतवा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल देंगे, बड़े बड़े प्याऊ खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे। आजकल तो वो भी नहीं कर रहे, खैर आजकल तो वो जो भी कर रहे हैं वो इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स से बचने के लिए कर रहे हैं, पैसे पैसा फालतू है। तो गांव में दिल्ली से बाहर सस्ती जगह ले ली और उसके बाद बहुत बड़ा एक कॉलेज खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया और इनकम टैक्स से भी बच गए और पैसा भी खूब कमा रहे हैं। तो वैसे पहले लोग करते थे फ्री फ्री स्कूल, कहाँ फीस वूस नहीं होती थी, कॉलेज भी फ्री होते थे या बहुत कम पैसे लगते थे, हॉस्पिटल भी खोलते थे फ्री करते थे। तो ये पुण्य कर्म है ये, और वो सोचते हैं कि हम शायद ये पुण्य कर्म करके ही भगवत धाम वापस जा सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं ये। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जो कृष्ण को नहीं मानता है वो आसुरी है, नास्तिक है। वो लोग जो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहता है, जबकि हमारे सारे ग्रंथ, हमारे वेद पुराण श्रुतियां भागवत महाभारत ईशोपनिषद भगवत गीता में तो साक्षात भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है, कृष्ण है। ब्रह्मा जी जो हमारे दादा परदादा हैं वो बता रहे हैं, तो हमें क्यों ना यकीन करें हम उनकी बात के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और स्वयं भगवान कहते हैं वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य। वेद का मतलब ज्ञान, और सारे ज्ञान का जो तात्पर्य है, सारांश है, वो भगवान बोलते हैं मुझको जानना है। बड़ी भौतिक पढ़ाई पढ़ ली, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, ग्रंथ कंटेस्ट कर लिए, लेकिन कृष्ण को नहीं जाना, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं माना, तो उनके लिए इसी श्लोक में कहा है कि उनका ज्ञान जो है वो निसफल है, उनका कर्म भी निसफल है, व्यर्थ आ गया हुआ है उनका। और ऐसे लोगों को रूपा जी कहते हैं नास्तिक। जैसा कि सातवें अध्याय में बता चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं, इनको दुष्ट कहा गया, दुष्ट मूढ़ा नराधामा सूटेड बूटेड एनिमल, रूपा जी ने शब्द दिया, ये पेंट कमीज पहने हुए पशु, चाहे जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो, लेकिन भागवत गीता उसको बोलती है मूढ़ा नराधामा। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। वो कहते हैं कृष्ण और जीव एक ही है, हम भी एक दिन तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, जयेश्वर बन जाएंगे, ऐसा बहुत अंटसंट लोग कहते हैं। लेकिन भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, ऐसे भगवान नहीं है, तपस्या करके या कुछ ऐसे कार्य करके योगा करके वो भगवान नहीं बने हैं। वो तो जब यशोदा मैया की गोद में थे तब भी भगवान हैं। 3 महीने के थे तो छकड़े को उड़ा दिया है ना, तृणावत्र को मार दिया और बहुत सारी लीलाएं की हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृतिक द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, मतलब हम भी ईश्वर बन जाएंगे। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का औसरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो कर्म है, यह व्यर्थ है, निष्फल है। यही श्लोक का संकेत है, इस श्लोक का सारांश यही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांगम्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। चाहे जितने मर्जी वो वेद पुराण कंठस्थ कर ले, उपनिषद कंठस्थ कर ले, लेकिन सब बेकार, समय व केवलम, केवल श्रम है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। ये कहना कि कृष्ण जो है हमारी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। चैतन्य महाप्रभु जी भी, चैतन्य महाप्रभु जी को, क्योंकि वो कृष्ण ही हैं, कृष्ण एक, फिर उसके बाद अपना विस्तार करके राधा रानी बनते हैं वो, उसके बाद फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु जी बन जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो उनको भी कृष्ण से अलग मानना अपराध है। घोर सिर्फ अपराध नहीं है, घोर अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्मा सा सर्वसमाद विष्कार्य शोतस्य सम्राट विधानतः मुखम तस्याविलोक्यपि सचेलम स्त्राम अचरेत। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी यहां पर बृहद विष्णु स्मृति। यहां पर क्या बता रहे हैं, जो इस प्रकार सोचता है ना कि कृष्ण जो हैं एक हमसे ही, हम जैसे ही एक व्यक्ति हैं, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए, ऐसा बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है। यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। मतलब जो भी नास्तिक लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो भी मायावादी भी, और जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं, जो इन लोगों का मुंह देख ले उसको चाहिए कि तुरंत गंगा में स्नान करे, जिससे छूत दूर हो सके। ये छूत की बीमारी है एक्चुअली, इनको देख देख के ना, जैसे किसी को आजकल सुना है स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, तो उसके साथ हाथ भी मिलाओगे या सामने खड़े हो जाओगे ना एक गज की दूरी पे, तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही ऐसे लोगों का संग करने से, ऐसे लोगों से दोस्ती करने से ये छूत की बीमारी हम में भी आ सकती है, जो भगवान को मामूली आदमी समझते हैं अपनी ही तरह। ऐसे लोगों का संग करना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, उसके साथ अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो इतना नुकसान नहीं है। जो भोले भाले लोग हैं, अनजान लोग हैं, जैसे विदेशी लोग अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलिया के, जहां प्रभुपाद जी ने जाकर के प्रचार किया, तो उन लोगों को तो पता ही कुछ नहीं था भगवान के बारे में। वो इतने पापी नहीं, हालांकि बहुत सारे उन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं और करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोले थे, सरल स्वभाव के थे, वो इतने अपराधी नहीं थे। प्रभुपाद जी ने जैसे उनको कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण, तो उन्होंने मान लिया, तो इसका मतलब है वो अपराधी नहीं थे। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जानते बूझते भी, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी भगवान को साधारण मानव समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि इनका संग करना बहुत खतरनाक है, घोर अपराध है, इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर जोनियों में रह जाना लिखा है। इस दफा तो किसी पुण्य कर्म के कारण कोई अच्छा कर्म कर दिया उन्होंने, उनको मानव जीवन मिल गया, लेकिन इसके बाद फिर मानव जीवन भूल जाओ, उनको मानव जीवन मिलने वाला नहीं है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम रहेगा, भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे, मतलब नरक में गिरते जाएंगे। तो सबसे खतरनाक है ये मेंटेलिटी कि कृष्ण जो हैं उनका शरीर हमारी तरह है। देखिए, जब भगवान प्रकट होते हैं और हम लोग पैदा होते हैं तो हमें फर्क है। जेल में जब देवकी और वासुदेव जेल में थे तो उन्होंने पहले तपस्या की थी काफी, तो भगवान ने अपना विष्णु रूप बताया और उसके बाद फिर छोटे बच्चे बने, उनके देवकी मैया के बगल में लेट गए हैं। और उससे पहले वो एक और भी बात हुई है क्या कि भगवान वसुदेव जी के हृदय में गए और वहां से फिर वो ट्रांसफर हुए देवकी जी के हृदय में। भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये बात, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वो तो प्रहलाद जी के लिए खंभे से भी प्रकट हो गए, तो इसलिए भगवान के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। भगवान वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में गए और उसके बाद ऐसे लगा कि इनको अभी गर्भ हो गया है, फिर टाइम के अनुसार भगवान प्रकट भी हुए, लेकिन जिस प्रकार हम लोग पैदा होते हैं वैसे नहीं, अपना विष्णु रूप बताया चतुर्भुजी रूप, पर मैया ने कहा कि नहीं आप छोटे बच्चे बन जाइए, तब भी उनका रूप नारायण वाला था, चार हाथ वाला था, तब उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं, जो अंडरी बच्चा होता है दो हाथ वाला होता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो हैं वो हमारी तरह प्रकट नहीं होते, हमारी तरह पैदा नहीं होते हैं। हमारे पैदा होने में और भगवान के पैदा होने में बड़ा अंतर है। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें छोड़कर माया के मोह में लीन हैं, उनकी आशाएं कभी भी पूर्ण, आशाएं क्या हैं हमारी, हम भगवान बन जाएं तपस्या करके, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, आदि आदि आदि, और उनके सभी कर्म और साधन निष्फल रहते हैं जितने भी काम करेंगे वो, क्योंकि भगवान सेंटर में नहीं है ना, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उनके सारे कार्य जो हैं वो बेकार जाते हैं और वो लोग अभिमानी बन जाते हैं। हो, मैंने इतनी तपस्या की, मेरे पास इतनी काबिलियत है, मैंने पूरा ग्रंथ जो है मुझवानी रट लिया है, भागवतम मुझे पूरी याद है, भगवत गीता मुझे पूरी याद है, इस प्रकार वो अभिमानी बन जाते हैं। अभी देखा होगा आपने जितने भी कोई हो बीच में प्रोफेसर वगैरह, तो गुस्सा मत करना, जितने भी एजुकेशनिस्ट होते हैं प्रोफेसर, बड़े अभिमान होता है उनको अपने काबिलियत के ऊपर, दूसरे आदमी को वो कुछ समझते नहीं है, इतना अभिमान होता है उनको। जैसे हम किसी, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम किसी दफ्तर में या फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसे काम है, वो तो वेतन नहीं देता ना, उसका मालिक जो है या उसका कोई ऑफिसर है वो वेतन देता है। हम चाहें कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने इतनी तपस्या की तो हमें ये फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो, मैं बहुत तपस्या करूं, बहुत बड़ा काम करूं, मुझे ये फल मेरी मर्जी से मिल जाए, भगवान भगवान तो कुछ नहीं है, तो वो काम थोड़ा फल देगा। अभी चांदनी चौक में जाइए आप या सदर बाजार में जाइए, तो रात के बाद या 10-11 के बाद वहां पर बड़े बड़े ठेले लेकर के, है ना, दो दो बैलों का भी, बैलों से भी ज्यादा वजन ढोते हैं वो। तो इसका मतलब है उनको तो टाटा बिरला से भी बड़ा बन जाना चाहिए। फल जो है वो, या उसकी मेहनत जो है वो भगवान के हाथ में है। भगवान जो है वो वेतन देगा, वो पैसा देगा, वो फल देगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान को कर्म समर्पित ना करके और उसे फलदाता ना समझ करके स्वयं कर्मों का फल चाहता है या वेतन चाहता है, उसकी इच्छा पूर्ति कैसी होगी? भगवान को तो मानता ही नहीं वो, मालक को मानता ही नहीं है, तो पैसा कौन देगा? वो उनके कर्मों का फल, मतलब यहां पर आता है, समझने का प्रयास करो, उसके कर्मों का फल कौन देगा जब किसी को मानता ही नहीं है वो? तो उसकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि कर्म स्वयं फल देने में असमर्थ हैं, जड़ है कर्म, तो जो हमने काम किया जो कोई, वो तो जड़ है, तो वो थोड़ा फल देगा। ईश्वर से विमुख होने से सत्कर्मों का फल कभी नहीं मिलता है। हम चाहे, वो शुरू में बताया ना, चाहे हम हॉस्पिटल खोलें या कॉलेज स्कूल खोलें, प्याऊ लगाएं, सत्कर्म है, लेकिन अगर हम ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर को सेंटर में रख करके नहीं करते हैं, तो इसका फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। उल्टा दुख प्राप्त होता है। बिना परमात्मा को समर्पित किए गए कोई भी कार्य सत्कर्म फलदायक नहीं होता है। अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो फल देने वाला कोई नियुक्त करना पड़ेगा। यदि हम नौकरी करेंगे तो किसी का स्वामित्व स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम किसी को मालिक नहीं मानेंगे तो फल कौन देगा? हम किसी को भगवान मानते नहीं है, तो इसका मतलब है ये दुनिया ऐसे ही बन गई है। एक बार एक बच्चा था, तो उसने, उसके फादर जो हैं वो भगवान को नहीं मानते थे, ये दुनिया अपने आप ही बन गई है। तो बच्चे ने एक दिन बड़ी बढ़िया सी पेंटिंग बनाई और ड्राइंग रूम में रख दी। फादर जब शाम को आए तो फादर बोलते हैं, भाई ये बड़ी अच्छी पेंटिंग है, ये किसने बनाई है? नहीं नहीं नहीं, अपने आप बन गई है। पागल, अपने आप ही कोई पेंटिंग बनती है इतनी बड़ी है? तो जब पेंटिंग अपने आप नहीं बनती है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड, वो अपने आप थोड़े बन गए हैं, उनके पीछे भी भगवान की बुद्धि है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। और कोई बोले कि तपस्या करके ही मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं है। हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बड़े बड़े राक्षस लोग हुए हैं, उन्होंने बड़ी घोर तपस्याएं की हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण आदि। तो उनका हाल क्या हुआ? वो तो अपने आप को भगवान मानते थे, हिरण्यकश्यपु। कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे, विष्णु को भगवान नहीं मान रहे थे, अंत में उसको मरना पड़ा। फल तो नहीं मिला उनको तपस्या का कुछ भी। जो फल है वो तो एक्चुअली ये है कि भाई जन्म मृत्यु से रहत हो जाए, वैकुंठ में जाएं, भगवान के धाम में जाएं। तो बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी कृष्ण के बिना, अगर कृष्ण को सेंटर में नहीं लिया तो उसका कोई फल नहीं है। रावण ने भी बड़ी यज्ञ किए अपने, कई बार तो अपनी गर्दन काट दी यज्ञ किया, शिवजी तो प्रसन्न हुए लेकिन भगवान तो प्रसन्न नहीं किया। रामचंद्र जी को तो अपना दुश्मन बना लिया, तो उसके बाद उसका फल क्या हुआ? अच्छा फल तो नहीं मिला, अच्छा वेतन तो नहीं मिला उसको नौकरी का, नौकरी मतलब तपस्या का जो उसने की। अंत में सब पता है सबको कि रावण का क्या हाल हुआ। तो ना तपस्या से, ना ज्ञान से, ना कर्म से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो। हां, अगर ज्ञान तपस्या जो भी है सब कुछ हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं,
भगवान का निर्देश ही है, जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। भगवद गीता में कहा गया ना, जो कुछ भी करना है मेरे लिए करना है, मैं ही एकमात्र सबका पिता हूं और बाकी सब कौन है, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दास हैं, तब हमारा काम बन सकता है। नहीं तो हम जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कितने मर्जी वेद कंठस्थ कर लें, कितनी मर्जी तपस्या कर लें, उनका कोई अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। केवल एकमात्र कृष्ण की भक्ति जो है उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर तपस्या से करते होते हैं तो रामायण में देखिए आप, जो ऋषि मुनि थे वो तो बड़े बड़े स्कॉलर थे, बड़े विद्वान थे, बड़ी तपस्या भी करते थे, और उन्हीं के बगल में आगे जाकर के अलग से उनके बीच में नहीं, उनके बीच में नहीं, अपने बीच में नहीं रहने देते थे। भिलनी शबरी जो है वो तो बेचारी अलग रहती थी, अनपढ़ थी, गांव की रहने वाली थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें भगवान राम के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था कि भगवान, उनको पता था, एक दिन किसी ने बताया था नारद जी ने कि एक दफा तुम्हारे भगवान जरूर आएंगे, राम आएंगे। बस ये श्रद्धा लेकर के वो जीवन पर्यंत राम का, भगवान राम का राह तकती रही, और जब भगवान आए तो रास्ते में ऋषि मुनियों की कुटियाएं पड़ती थी, लेकिन भगवान वहां नहीं गए, सीधा जाके बिल्ली के पास गए हैं और उसके बाद बाकी ऋषि मुनियों को मिले हैं। तो इससे यह भी बात सिद्ध होती है कि बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े ज्ञान से, बड़े रटे मारने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को केवल सरल हृदय वाला व्यक्ति चाहिए, सरल हृदय से भगवान से प्रेम करे, चाहे वो ज्यादा तपस्या ना भी कर सके, थोड़ी सी भी जो भक्ति कर लेता है तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे। और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की उनका हाल तो हाल आपने सुन लिया कि उनको तो अंतोदगतवा मरना ही पड़ा, और ऋषि मुनि भी जो थे उनको भी दर्शन भगवान के बाद में हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, अभी सिद्ध हो गया ना कि बिना भक्ति के हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये सिद्ध कर दिया आज के श्लोक में। हम चाहे बहुत कर्म करें, बड़ी तपस्या करें, है ना, बड़े पुण्य कर्म करें, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो सारे हमारे व्यर्थ हैं, क्योंकि कृष्ण को सेंटर में नहीं लिया हमने, केंद्र नहीं बनाया कृष्ण को, कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं बनाया। और अगर हम ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते किसी वजह से, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ज्यादा याद भी नहीं कर सकते भगवद गीता के श्लोक, लेकिन भगवान के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है, शिवरी की तरह, भिलनी की तरह, तो भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अलावा और किसी को चाहते ही नहीं है। मैं तो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं चाहता, प्रभुपाद जी भी यही कहते थे कि मैं तो कृष्ण के लिए ही बोलते 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 मर जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, यही आज के श्लोक में यह बताया गया है कि हमें जो भी कार्य करना है, जो भी कर्म करना है, जो भी ज्ञान अर्जित करना है, वो कृष्ण के लिए ही करना है, भगवान की यही भक्ति है। और कलयुग में भक्ति को और भी सरल बना दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो राधा कृष्ण के एक रूप लेकर के आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने क्या बताया हमें भक्ति का तरीका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान यही चाहते हैं हमारे से, भगवान हमारे से यही चाहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, ये भगवान का उद्देश्य है, भगवान का मिशन भी है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, मैं तो था नहीं यहां पर, पंचकुला में गया हुआ था मैं गौर पूर्णिमा के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी अभी प्रकट भी नहीं हुए थे, अभी गर्भ में ही थे, प्रकट होने वाले थे। तो तभी उसी दिन क्या था, चंद्र ग्रहण था, फुल मून था, गौर पूर्णिमा थी। तो सब दुनिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे पूरी दुनिया में लोग। तो ये भगवान का मिशन है, कलयुग में भक्ति का ये बहुत ही आसान तरीका है। कोई पैसा खर्च नहीं करना है इसके ऊपर, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जितना ज्यादा जप आप करते जाएंगे, जितना ज्यादा जप करते जाएंगे, उतना ज्यादा और आनंद आता जाएगा, और आनंद आता जाएगा, और आनंद आता जाएगा। बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमारा मन नहीं लगता है हरे कृष्ण जाप करने में, तो प्रभुपाद जी यही कहते थे कि और जाप करो, और जाप करो, और जाप करो। इसका मतलब है अभी आप शुद्ध नहीं हुए, और धीरे 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 धीरे, और शुद्ध होने का तरीका भी यही है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा और जप करें, और जप करें, और जप करें। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आनंद आना शुरू हो गया, हो जाएगा। तो यहां मैं विराम देता हूं। आज के श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही कही गई है कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, मोटे शब्दों में। और जो भगवान की निंदा करते हैं उनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। और जितने भी हमारे कर्म हैं, जितने भी हमारे ज्ञान हैं, भगवान की सेवा में लगा दो। हमें प्यार प्रेम करना है तो कृष्ण से करना है। ये आज के श्लोक में से हमने सीखा है, और इसी को याद रखिए तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।